परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओ, इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से अय्यूब नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है अय्यूब की पीड़ाएं और समस्याएं। हमें विश्वास है श्रोताओ कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में शामिल हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मसीह महिमा तेरी महिमा हो, मसीह महिमा हो, सुबह को हो दोपहर को हो संध्या को सारी रात्रि को, मसीह महिमा, मसीह महिमा हो तेरी महिमा हो, मसीह महिमा। महिमा मसी महिमा हो महिमा ही महिमा मसी महिमा हो सुबह हो दोपहर हो संध्या हो सारी रात्रि को मसी महिमा हो संध्या को सारी रात्रि को हो महिमा हो
प्रिय मित्र प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर उसके आनंद में आनंदित हैं। आज फिर से एक बार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप फिर से नई बातों को सीखेंगे। मैं उन नए मित्रों का स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से अय्यूब नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही रुचिकर पुस्तक है। मित्रों, इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम अय्यूब की पुस्तक में से अध्ययन करते हैं, उसके जीवन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते और सीखते हैं निश्चित रूप में हम सबके जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, किसी न किसी प्रकार के तनाव से दबे हुए हैं। पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन के द्वारा आप उन्हें शांति प्रदान करें। इस समय फिर से वार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा शैतान जब फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आया तो परमेश्वर ने उससे कहा, तूने मुझे बिना कारण उसका अर्थात याकूब का सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हम आगे देखेंगे अय्यूब दो अध्याय उसके 4-6 पद में लिखा हुआ है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। देखिए, शैतान हम में से अधिकांश के बारे में सही अनुमान लगाता है। हमारे कवच में छिद्र है, हम सब की अपनी अपनी दुर्बलताएं हैं, हम अंततः हार मान लेते हैं, परंतु परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10:13 पद में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। मित्रों, ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारे क्षमता से परे हम पर परीक्षा नहीं आने देगा, हम यह भली भांति जान ले और समझ लें। मेरे प्रियो, आप जहां भी हैं और जैसा भी कष्ट उठा रहे हैं, परमेश्वर आपको संभालेगा। यह एक महान ढाड़स की बात है, हम नहीं जानते कब क्या हो जाए, यह त्रासदी भी हो सकती है तो अति आनंद का समय भी हो सकता है। जो भी हो, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें पार लगने की क्षमता प्रदान करूंगा। परमेश्वर सुनिश्चित करेगा कि हमारे हथियार प्रभावी हों। यह एक अद्भुत जानकारी है। जी हाँ, शैतान झूठा है, वह कहता है कि अय्यूब अपनी देह के बदले में कुछ भी करेगा। यदि शैतान को उसकी देह को छूने की अनुमति दी जाए तो वह परमेश्वर को कोसेगा। आइए देखें आगे, ऊज देश, अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अय्यूब की परीक्षा ली जा रही थी। इसमें शक नहीं कि शैतान उसे तोड़ देने का प्रयास कर रहा था। उसकी धन संपत्ति समाप्त हो गई थी, उसका परिवार समाप्त हो गया था और अब उसके शरीर पर वार किया जा रहा है। अय्यूब के कष्टों का कारण मनुष्य की समझ से तो बाहर था। जी हाँ, उसे पाप का दंड तो नहीं मिल रहा था और उचित अंतर्दृष्टि के बिना कुछ कहना निर्बुद्धि की बात ही थी। यही कारण है कि परमेश्वर ने पुस्तक के आरंभ में ही हमें वस्तु स्थिति प्रकट कर दी थी कि हम स्थिति को समझ सकें। मेरे प्रियो, अय्यूब के साथ जो भी हो रहा था उसका एक विशेष एवं लाभकर उद्देश्य था। परमेश्वर की आंतरिक इच्छा में इसका एक भला एवं सिद्ध कारण भी था। सब तथ्यों एवं पक्षों को देखते हुए इसमें परमेश्वर का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। यह एक अनुशासन था और हम कह सकते हैं कि अय्यूब के लिए अच्छा था। जब कोई पिता अपने बच्चे की पिटाई करता है तब वह कहता है, मुझे इसमें तुमसे अधिक दुख होता है। बच्चा उत्तर देता है, जी हाँ, परंतु उसी जगह पर नहीं जहाँ मुझे दर्द होता है। यह अनुभव अय्यूब की सर्वोच्च भलाई के लिए था। स्मरण रखें, परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है। यशाया की पुस्तक 55 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जी हाँ, हम अपनी संतान को कष्टों से बचाने का यथासंभव प्रयास करते हैं। हम उनके जीवन को सुलभ बनाने का भरसक प्रयास करते हैं और परिणाम स्वरूप हम उन्हें बिगाड़ देते हैं। हमने एक बिगड़ी हुई पीढ़ी को उत्पन्न किया है। एक दिन आया जब अय्यूब को समझ में आ गया कि इस अनुभव से अच्छाई उभर रही है, परंतु आरंभ में वह नहीं समझ पा रहा था। अब यह अय्यूब की भलाई के लिए ही नहीं परमेश्वर के महिमान्वन के लिए भी था। आपको स्मरण होगा कि शैतान ने परमेश्वर के गुण को मलिन करना चाहा था। मेरे विचार में शैतान द्वारा लगाए गए लाक्षण को सुन सब स्वर्गिक प्राणी कांप उठे होंगे। उसके कहने का अभिप्राय था, तू प्रेम के योग्य नहीं है। तुझे अय्यूब से प्रेम पाने और सेवा करवाने के लिए उसे सुख सुविधा देना पड़ता है। तू प्रेम पाने के लिए प्रेमियों को सदा ही दिया है। मित्रों, क्या यह सच है? क्या हम केवल भाड़े के टट्टू हैं? क्या हमें भाड़े के प्रेमी हैं? परमेश्वर हमारे साथ भला और दयावान है। हम उसकी भलाई के कारण आनंद करते हैं, परंतु परीक्षा की घड़ी में हमारी सच्चाई बाहर आती है। आग मैल को जला देती है, परख से सच्चाई प्रकट होती है। हमें जगत की ज्योति होना है। ज्योति अंधकार में चमकती है। परमेश्वर ने हमें अंधकार भरे संसार में रखा है कि हमारी ज्योति चमके। जी हाँ, परमेश्वर ने अपने संतान से सुखी जीवन की प्रतिज्ञा नहीं की है। इसके विपरीत हमसे कहा गया है कि मार्ग दुर्गम होगा। यदि हम उसके साथ कष्ट उठाएंगे तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि कष्ट न हो तो ठाट बाट भी नहीं होंगे। यदि कष्ट और संघर्ष जीवन में न हो तो राजदंड भी नहीं होगा। सर्वशक्तिमान की भयानक भुजा के अधीन झुकना कठिन है। यही कारण है कि पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे दूसरे पत्र में कहा, 2 कुरिन्थियों 5:11 में, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। मेरे प्रियो, अय्यूब का यह शारीरिक कष्ट क्या था? लिखा है कि उसकी संपूर्ण देह पर बड़े बड़े फोड़े फूट निकले थे, जिन्हें वह ठिकरे अर्थात मिट्टी के बर्तन के टुकड़े से खुजलाता था। विश्वासी डॉक्टरों ने इस रोग का अनुमान लगाने का प्रयास किया है। इंग्लैंड के डॉक्टर सेड्रिक हार्वे के अनुसार यह रोग एक चर्म रोग था जो मानसिक तनाव से उत्पन्न होता है। यह आपके लिए सोचने की एक अच्छी बात है। परमेश्वर कहता है कि उसका शरीर फोड़ों से भर गया था और यह डॉक्टर कहता है कि वह मानसिक तनाव के कारण था। अब आप ही सोचें कि डॉक्टर बनना आपके लिए क्या होगा। डॉक्टर वहां स्वयं तो निदान कर नहीं रहा था कि इसे मानसिक कारण बताएं, अतः मैं उससे सहमत नहीं हूं। डॉक्टर हार्वे ने एक मेडिकल पत्रिका में इस पर लेख भी लिखा था। उनका कहना है कि अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब की अनिद्रा का रोग प्रकट है, जिसके कारण उसे भयानक स्वप्न आते थे और वह तनावग्रस्त था। मेरे प्रियो, आज ऐसे रोग के यही लक्षण है। इस प्रकार आपको एक रोग की जानकारी तो प्राप्त हो ही जाती है। अमेरिका के एक डॉक्टर के अनुसार अय्यूब का यह रोग विटामिन की कमी के कारण था। त्वचा फटने का रोग, आज यह बीमारी इटली में पाई जाती है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे क्या मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह त्वचा का कैंसर भी हो सकता है, परंतु मैं तो कहूंगा कि उसके शरीर में फोड़े उभर आए थे और उसकी दशा बड़ी दयनीय थी। शैतान ने अय्यूब से वह सब छीन लिया जो मनुष्य का मान सम्मान निर्धारित करता है। अब उसकी पत्नी का उल्लेख आता है तो सुनिए कि वह क्या कहती है। अय्यूब 2:9 में, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। शैतान अय्यूब की ऐसी दुर्दशा करना चाहता था कि वह अपने आप को मनुष्य भी न कहे। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि वह परमेश्वर को कोस कोस कर मर जाए। यह किसी पत्नी द्वारा दिया गया बड़ा ही विचित्र परामर्श है। क्या वह विधवा होना चाहती थी? यह उसकी भलाई का ही सुझाव था, क्योंकि वह अय्यूब के कष्टों को देख नहीं पा रही थी। शैतान ने अय्यूब के सब प्रिय जनों को समाप्त कर दिया था, तो उसने उसकी पत्नी को क्यों जीवित छोड़ दिया? मेरे विचार में वह अय्यूब के लिए सहायक नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शैतान का साधन थी। हम आगे पढ़ते हैं अय्यूब 2:10 में, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए कि अय्यूब निष्ठावान बना रहा। पुस्तक का वास्तविक आरंभ यहाँ से होता है। हमने देखा है कि अय्यूब पर कैसे कष्ट आए और वह फिर भी परमेश्वर का निष्ठावान बना रहा। अब अय्यूब के मित्र उसे ढाड़स बंधाने के लिए आते हैं। यह वह समय है जब उसकी भक्ति पर उंगली उठाई जाएगी। अब वार्तालाप का समय भी आरंभ होता है नगर के ढलाव पर। आइए पढ़ें अय्यूब 2:11 में लिखा है, जब तेमानी, एलीपच और शूही विलदात और नमाती सोपर, अय्यूब के इन तीनों मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहां से उसके पास चले। यहां अय्यूब के तीन मित्र हैं और हमें उन्हें जानना आवश्यक है। उत्पत्ति की पुस्तक 36:10-11 के आधार पर तेमान एसाव का पोता था। दूसरा मित्र था शूही विलदत। उत्पत्ति की पुस्तक 25:2 के अनुसार शूह अब्राहम का पुत्र था। तीसरा मित्र था नमाती सोपर। नमा उत्तरी अरब का एक स्थान था। इन तथ्यों के आधार पर अय्यूब का जीवन काल पितरों के युग में था। यद्यपि हम अय्यूब के निवास का सही स्थान नहीं जानते हैं, इन तथ्यों के आधार पर हम उसके निवास स्थान का अनुमान लगा सकते हैं। ये लोग अय्यूब के पास शोक प्रकट करने के लिए आए थे। यद्यपि मैं अय्यूब के मित्रों के बारे में बुरी बातें कहूंगा, परंतु उनकी अच्छाई देखना मेरे लिए उचित है। इस दुर्घटना से पूर्व वे अय्यूब के अच्छे मित्र थे, परंतु इस घटना के बाद वे अय्यूब से अलग हो गए, और इसका कारण था कि वे परमेश्वर को नहीं जानते थे और न ही वे परमेश्वर के भेदों को समझते थे। मेरे मित्रों, यह एक अति उत्तम तर्क है कि हम आज किसी के साथ घटने वाली दुर्घटना का अर्थ निर्धारण में अत्यधिक सावधान रहें। हमें कोई अधिकार नहीं कि कहें परमेश्वर ने किसी के साथ इसलिए कुछ किया कि वह ऐसा था या वैसा था। संभवतः हमारा विचार सही हो, परंतु समस्या तो यह है कि हम वास्तविक कारण को नहीं जानते हैं। अय्यूब के ये मित्र ऐसी निश्चितता से कह रहे थे जैसे आज का मनुष्य कहता है। अपनी समझ में वे सोचते थे कि उन्हें बुराई आने का कारण ज्ञात है, परंतु वे पूरी तरह गलत थे। तथापि ध्यान दे कि वे अय्यूब के सच्चे मित्र थे। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय उसके 12 और 13 पद में हम पढ़ते हैं, जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात न कही। उन्होंने अय्यूब के कष्टों के बारे में सुना था, परंतु उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसकी स्थिति ऐसी गंभीर होगी। पिछली बार जब उन्होंने अय्यूब को देखा था, तब वह अपने बच्चों के साथ ठाट बाट में था। उन्होंने उस क्षेत्र में अय्यूब के ऐश्वर्य को भी देखा था। अब वे अय्यूब से भेंट करने आए तो उन्होंने उसे कम से कम एक अच्छे घर में देखने की आशा की होगी, परंतु वे उसे नगर के ढलाव पर बैठा ठिकरे से अपने घाव को खुरचते हुए देखा। उसके पास कुछ नहीं था, उसका सर्वनाश हो गया था। अभागा अय्यूब। उसके मित्र रोए और बिलाप किए। वे 7 दिन तक बिना कुछ कहे चुपचाप बैठे रहे। वे 7 दिन रात वहां उसके साथ बैठे रहे। मैं उन्हें अय्यूब के सच्चे मित्र कहूंगा। वे उसे ढाड़स बंधाने के लिए वहां पर बैठे थे, यद्यपि वे उसके लिए विलाप कर रहे थे, वे ढाड़स बंधाने की स्थिति में नहीं थे। इसके 3 कारण हैं। पहला, वे परमेश्वर को नहीं समझ पाते थे। दूसरा, वे अय्यूब को नहीं समझ पाते थे। और तीसरा, वे स्वयं को नहीं समझ पाते थे। विलाप के इन 7 दिनों में जब वे वहां बैठे थे, वे अय्यूब को ध्यान से देख रहे थे और अपना सिर ऐसे हिलाते थे जैसे कि वे कुछ समझ रहे हैं। वे तीनों बुद्धिमान मनुष्य थे। वे महान विचारक दर्शन शास्त्री थे। इन 7 दिन में विचार करके वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, चाहे उनका दृष्टिकोण भिन्न रहा हो। अय्यूब ऐसा कष्ट भोग रहा है तो निश्चय ही वह बहुत बड़ा पापी है और परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। अच्छा होगा कि वह अपने आप को सुधारे। यही उन तीनों का निष्कर्ष था। अय्यूब उनका व्यवहार सहन नहीं कर पाया क्योंकि वे चेहरे पर शिकन लाकर सिर ऐसे हिला रहे थे जैसे कि सब समझ गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मन ही मन कह रहे हैं, ओह भाई अय्यूब, सच्चाई अंत में बाहर आ ही जाती है। तू पाप में जी रहा था, परंतु बाहर ऐसा दिखाता था कि तू बहुत धर्मी है। अब हम समझ गए हैं कि तेरे पाप का घड़ा फूट गया है और तुझ पर दंड आया है। अय्यूब इस व्यवहार को सहन नहीं कर पाया। वह सब कष्ट सह सकता था, परंतु झूठा दोषारोपण नहीं। अतः वार्तालाप आरंभ होता है। पहले अय्यूब ही कहता है और अगले अध्याय में उसका दिल टूटना को हम देखेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि कई बार जब हमारे ऊपर में कोई झूठी आरोप लगती है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमारे मित्र चाहे कितने भी करीबी क्यों ना हो, अपने घर वाले कितने भी करीबी क्यों ना हो, हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं। और यही बात अय्यूब के साथ भी हुआ। अगले अध्ययन में हम देखेंगे कि उसका दिल किस प्रकार से टूटता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही परमेश्वर के उन आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर हम अय्यूब के जीवन से उन नई बातों को सीख रहे हैं कि वह परमेश्वर से कितना प्रेम करता था। मेरे मित्रों, कई बार मुझे और आपको लोग गलत समझने लगते हैं और उसके अनुसार से हम पर दोष लगाते हैं, परंतु परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को जानता है। इस समय मैं आपके जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात को अवश्य जानता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देना चाहता है। यदि आप बीमार हैं या किसी ऐसे तनाव में हैं, तो आप निश्चय जाने कि इसके द्वारा परमेश्वर आपको कुछ नई बातें सिखाना चाहता है। आप निराश मत हो, आप इस बात को जान ले कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको अवश्य ही छुटकारा देगा। मेरे प्रिय मित्र, आइए आज हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को अय्यूब के साथ में लेकर के आएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे भी अय्यूब के समान सामर्थ प्रदान कर कि मैं इन बातों को सह सकूं, आपकी बातों को समझ सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, आपके दास अय्यूब के लिए जिसके जीवन में प्रभु आपने बड़े अद्भुत कार्य किए। यद्यपि कि सब कुछ उसके पास से छिन गया, इसके बावजूद आप उससे सामर्थ देते रहे। हाँ प्रभु, आज हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को भी अपनी शक्ति और सामर्थ प्रदान कीजिए, सहने की शक्ति दीजिए। जो निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, बीमार हैं, आप उन सब की सहायता करें। हम विश्वास करते हैं कि आप हम सबको संभालेंगे और सहायता प्रदान करेंगे। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। पथिक तू सदा